श्रोताओ, दुनिया में प्रेम, अहिंसा, त्याग और करुणा के अवतार ईसा मसीह के जन्म दिवस के पावन अवसर पर मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्यौहार विश्व कल्याण तथा धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना के लिए मानव प्रेम तथा आत्म त्याग के महत्व को उजागर करता है। आपको पता है, क्रिसमस को ईसाई धर्म के लोग बड़ा दिन कहकर भी पुकारते हैं। जी हाँ श्रोताओ, क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया में मानव प्रेम, त्याग एवं करुणा की प्रकाष्ठा का त्यौहार है। इस अवसर पर गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया जाता है तथा विश्व प्रेम एवं शांति के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की जाती है। श्रोताओ, ये तो आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम हम बनाते हैं महिलाओं के लिए। तो चलिए इस त्यौहार यानी क्रिसमस तथा प्रभु यीशु से जुड़ी एक खास महिला की बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। ये वो महिला है जिसको प्रभु ने विशेष रूप से चुना यीशु मसीह की माता होने के लिए, और उस महिला ने उस समय की प्रथा और परंपराओं की परवाह ना करते हुए किस तरह से अनोखे साहस का प्रदर्शन किया और चुनौतियों का सामना किया, जो आज की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो आइए सुनते हैं मरियम की कहानी।
श्रोताओं, आज जिस नाटक को प्रस्तुत किया जा रहा है उसका शीर्षक है यीशु की माता मरियम, जो एक नम्र दीन यहूदी कन्या थी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था कि परमेश्वर के पुत्र की माता बने। यह नाटक लुका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 26वें पद से लेकर के 38वें पद पर आधारित है।
मेरा नाम मरियम है। आपको सुनाने के लिए मेरे पास एक बड़ी अद्भुत कहानी है। जैसे जैसे इस कहानी का रहस्य मुझ पर प्रकट हुआ तो मेरे लिए इस पर विश्वास करना कठिन हो गया कि क्या सचमुच ये सब मेरे साथ घटा था। मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ जिसका जन्म बहुत ही प्रेमपूर्ण परिवार में हुआ था। मैं 3 बच्चों में दूसरे नंबर पर जन्मी थी। मैंने कभी भी अपने साथ पली बड़ी महिलाओं में अपने आप को विशेष महिला नहीं समझा और ना ही अन्य युवतियों से भिन्न समझा। जब मैं 15 वर्ष की थी तो मेरा परिवार गलील के झील के किनारे ही बसे एक छोटे से गांव से कूच करके नासरत नामक एक छोटे से शहर में आ बसा था। हमारी जाति में मंगनी का अर्थ होता है विवाह संबंध का पक्का हो जाना। इसके द्वारा समाज में शादी करने वाले जोड़े का इरादा प्रकट होता है और जो कस्में खाई जाती हैं वे विवाह के समान पवित्र समझी जाती हैं। हमारी प्रथा के अनुसार मंगनी की ये दशा 1 वर्ष तक मनाई जाती है, उसके बाद ही विवाह का उत्सव मनाया जाता है। ये 1 वर्ष का समय तैयारी का समय होता है। एक शाम सोने से पहले मैं अपनी डायरी में कुछ विचारों को लिख रही थी कि अचानक मैंने किसी दूसरे पुरुष की उपस्थिति अपने कमरे में महसूस की। एक चमकती हुई मानव की सी आकृति मेरी आंखों के सामने उभरती हुई नजर आई। डरते और कांपते हुए मैंने बड़े आदर के साथ उसकी बातें सुनी और जब मैं उसकी महिमापूर्ण बातों पर यकीन करने में देर लगा रही थी तो उसने कहा,
हे मरियम सलाम, भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा।
पर ये कैसे होगा? मैं तो कुमारी हूँ।
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत की उपस्थिति से मेरे मन में एक अद्भुत और वास्तविक शांति व आनंद भर गया। बिना शक किए मैं जानती हूँ कि मैं कोई झूठा दर्शन नहीं देख रही थी, पर एक वास्तविक और संदेशवाहक को देख रही थी जो परमेश्वर की ओर से मेरे पास भेजा गया था। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि ये सब बातें कैसे पूरी होंगी, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि जो बातें उसने मेरे विषय में बताई वे सच्ची थी, और जो कुछ उसने पहले से ही कह दिया वो जरूर पूरा होगा। काफी दिनों तक मैं इन सब बातों को अपने तक ही सीमित रखे रही, उस दिन तक जब तक कि मेरी माताजी मेरे पास नहीं आई।
मरियम सलाम, मैं जानती थी कि तुम मुझे इस जगह जरूर मिल जाओगी। बरसात के बाद क्या ये जगह बेहद खूबसूरत नहीं बन गई है?
हाँ माँ, सचमुच बहुत खूबसूरत जगह बन गई है। काश कि ये नदी बरसात में ही नहीं बल्कि हर समय इसी तरह लबालब बहती रहा करे।
तुम ठीक कहती हो मरियम, तुम ठीक तो हो ना? अपने बारे में कुछ तो हमें बताओ।
माँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहती हो?
प्यारी बेटी, पिछले 2 हफ्ते से तुम बहुत बदली बदली सी नजर आ रही हो। इससे पहले तुम बड़ी चुस्त, सुंदर और आनंद से भरपूर दिखाई देती थी कि तुम्हारा विवाह यूसुफ के साथ होने जा रहा है, लेकिन 2 हफ्ते से तुम बेहद गंभीर और अलग अलग सी रहने लगी हो।
हाँ माँ, एक बड़ी अजीब सी घटना है।
अच्छा?
जिस पर शायद ही कोई यकीन करेगा, और हो सकता है तुम भी मेरी बातों पर यकीन ना करो।
अरे मेरी बच्ची, तुम इस लायक हो कि तुम्हारी हर बात पे मैं पूरा यकीन करूं, इसलिए बिना झिझक बताओ कि आखिर बात क्या है।
तो ठीक है माँ, करीब 2 हफ्ते पहले की बात है, जब मैं घर में अकेली थी, जानती हो एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और मुझसे बातें करने लगा।
अच्छा, स्वर्गदूत आया? क्या बातें की स्वर्गदूत ने तुमसे? क्या कहा उसने?
उसने कहा कि उसका नाम जिब्राइल है, और माँ आगे जो बात उसने कही उस पर विश्वास करना और उसे समझना बड़ा कठिन है। उसने कहा मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और उसने मुझे चुना है कि मैं परमेश्वर के पुत्र को जन्म दूँ।
अरे बाप रे बाप, लेकिन मरियम मैं तुम्हारी हर एक बात का यकीन करती हूँ। पिछले ही हफ्ते ना जाने क्यों तुम्हारे पिताजी यशाया की पुस्तक से मुझे पढ़कर सुना रहे थे, जहाँ ऐसा लिखा है, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और हाँ, तुम्हारे पिताजी बता रहे थे कि इमैनुएल नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
माँ क्या सचमुच पवित्र शास्त्र में ऐसा बताया गया है? मैं तो एक कुंवारी हूँ और यूसुफ एक धर्मी जन है।
हाँ मैं जानती हूँ, और मैंने कभी भी तुम्हारी पवित्रता पर शक नहीं किया, और ना ही यूसुफ पर कभी मैंने शक किया है।
माँ तुम क्या समझती हो, यूसुफ मुझे तब भी अपना लेगा जब मैं उसे बताऊंगी कि मैं गर्भवती हूँ? वो तुम्हारी तरह मेरी पवित्रता पर पक्का यकीन कर लेगा?
अरे जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें अगर कोई है जो इस प्रकार के समाचार पर विश्वास कर सकता है तो वो सिर्फ यूसुफ है। हाँ, और मैं यकीन से जानती हूँ परमेश्वर ने उसे तुम्हारे ही लिए नियुक्त किया है, और वो जान लेगा कि केवल वही है जो परमेश्वर के पुत्र का पालन पोषण करने में मददगार रहेगा।
त्याग, प्रेम, शांति और करुणा के विषय में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं और अपने विचार हमें फोन पर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या अपनी आवाज को रेडियो पर सुनना चाहते हैं तो हमें फोन करें, मिस कॉल दें और या फिर SMS करें इस नंबर पर
8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।